13/9/63 का प्रातः क्लास रिकॉर्ड करना है। भूली नाथ से मिलाना कोई होगी, मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि बाप की तीरी पर बहिष है, बच्चे नहीं जानते हैं। तो मीठे मीठे बच्चे जानते हैं
क्यों?
जो बाप की नारी लेते हैं वो रूहानी स्टेज के बच्चे होते हैं। बाप रूहों का है, वो रूहानी स्टेज में रहने वाला सदाशिव है, तो बच्चों को भी रूह की स्टेज में रहना पड़ेगा। रूहानियत चेहरे से, चलन से और बोल से देखने में आती है। तो ऐसे मीठे मीठे बच्चे जो दूसरों को मिठास ही देते हैं, वो बच्चे जानते हैं कि बाप की सीढ़ी पर ये हाथ की हथेली स्थूल की बात नहीं है, ये बुद्ध रूपी हथेली की बात है। बुद्ध रूपी हथेली में बाप बहिष्ठ लेकर आया है, क्योंकि बाप रचेता तो जरूर नई दुनिया आत्मा स्वर्ग ही रचेंगे। कौन सा बाप रचेता? रचना और रचयिता का संबंध साकार में होता है या निराकार में होता है? निराकार आत्मा में, निराकार आत्मा का बाप सुप्रीम सोल, वो तो अनादि है। आत्माएं अनादि है, वो रची नहीं जाती है, और आत्माओं का बाप भी कोई रचने की बात नहीं, वो तो जो है सो तो है ही है। रचना उसे कहा जाता है जो पहले न हो फिर बाद में रचा गया। जैसे कुम्हार घड़ा तैयार करता है तो घड़ा पहले नहीं था, कुम्हार ने घड़ा बनाया तो कहेंगे कि घड़े की रचना की। तो रचने वाला भी चाहिए और रचना भी प्रैक्टिकल में चाहिए। तो फिर कौन से बाप की बात है? बाप रचेता तो जरूर नई दुनिया या स्वर्ग ही रचेंगे। सुप्रीम सोल बाप वो नई दुनिया रचता है या जब कोई साकार में प्रवेश करता है तब नई दुनिया का रचयिता बनता है? साकार में प्रवेश करता है तब साकार ही नई स्वर्ग की रचयिता है। बच्चों के लिए सुखी ही रचेंगे। कलयुग की दुनिया में आता है, कलयुग के अंत में, उस समय दुनिया में सुख नाम की चीज नहीं होती, तो जो चीज नहीं होती है उसको आकर के रचता है। बाप बच्चों की चाहना रखते हैं। परमात्मा की भी बाप है, जी क्यों लगा दिया है? भी कब लगाया जाता है? आल्सो उसका मतलब कोई दूसरा भी है। तो परमात्मा की भी बाप है, تو پھر دوسرا یہاں کون ہے, کس کی طرف اشارہ ہے؟ پرم پتا سے کسے کہیں گے؟ پرم پتا, پرم آتما, پرم پتا پرماتما, ایسے تھوڑی کہتے پرماتما پرم پتا, کیا کہتے پرم پتا پرماتما, جیسے کہتے ہیں شیو شنکر تو پہلے شیو پھر شنکر, ہے نا, جو بڑا ہے مکھیہ ہے وہ پہلے اور جو گوڑ ہے وہ بعد میں, تو بندو بندو آتماؤں کا پتا وہ سب کا پتا ہے, کیڑا پشو پکھی منشیا سب آتماؤں کا پتا ہے, اس کا کوئی پتا ہوتا نہیں. اور پھر پرم پتا کے بعد نمبر آتا ہے پرماتما, آتما کیسی پرماتما, کس سے بھیٹ کی گئی, کمپیریزن کس سے کیا گیا, آتماؤں کے ساتھ, آتماؤں کے ساتھ کمپیریزن کب کیا جائے گا, سمان سمان کے ساتھ کمپیریزن کیا جاتا ہے, یا جس کا کوئی تال میل ہی نہ بیٹھا ہو بیٹھتا ہو اس کے ساتھ کمپیریزن کیا جا سکتا ہے, سپریم سول کا کسی کے ساتھ تال میل نہیں بیٹھتا, اس کے لیے یہ کمپیریزن نہیں ہے, اس آتما کے لیے کمپیریزن نہیں ہے, کیا پرم آتما, کیونکہ وہ تو جنم مرن کے چکر سے ہی نہیں آ رہے ہیں, اب اگتا ہے اب کرتا ہے, وہ اگر کچھ کرے گا پاپ پنیہ تو اس کو بھوگنا بھی پڑے گا, تو بھیٹ ہوتی ہے آتماؤں کی آتماؤں کے ساتھ, تب ان آتماؤں کے بیچ میں کوئی پرم پارٹ دھاری ہے, وہ کون ہے؟ ہیرو پارٹ دھاری, تو آتماؤں کے بیچ میں جو پرم پارٹ بجانے والی آتما ہے اس کے لیے بولا پرماتما پی بھی باپ ہے, پرم پتا تو باپ ہے ہی, لیکن وہ جب اس سرشتی پر آ کر کے ساکار میں پرتیکش ہوتا ہے تو جس کے دوارا پرتیکش ہوتا ہے وہ پرماتما ہے, وہ پرم پتا ہے اور وہ پرماتما ہے, وہ بھی باپ ہے, یہ تو سب مانتے ہیں, صرف ودوان آچاریہ سرویاپی کہہ دیتے ہیں, ودوان آچاریہ جو ہے وہ سب پرجاپتا بن کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ یہ بات نہیں مانتے کہ ایک ہی مقرر رتھ میں پرماتما آتا ہے اور ایک ہی مقرر رتھ کے دوارا پرماتما سنسار میں پرتیکش ہوتا ہے, اگر وہ اس بات کو مان لے تو ان کو گھاٹا کیا ہے, صرف ودوان آچاریہ جو نہیں مانتے ہیں کہ پرماتما ایک ویاپی ہے وہ سرو ویاپی مانتے ہیں, اگر وہ ایک ویاپی مان لیں تو ان کو کیا گھاٹا آتا ہے, تو گھاٹا آتا ہوگا نا, کیا گھاٹا آتا ہے, اگر وہ ایک میں ویاپک مان لیں, ایک میں ہی ویاپک مانے سرو ویاپی نہ مانے تو پھر ان کی کوئی بات سنے گا نہیں, کیونکہ ان کی سپریم ایسی ختم ہو جائے, اب ان کو تو اپنی بات چلانی ہے اپنی منمت سنانی ہے, اس لیے وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ پرماتما ایک ویاپی ہو کر گیا ہے, یہ ودوان آچاریہ ہے یہ باہر کی دنیا کی طرف اشارہ کیا ہے, یہ پہلے براہمن بچوں کی طرف اشارہ کیا ہے, براہمن بچوں کے اندر بھی ایسے ایسے ودوان آچاریہ ہیں, وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کیا کہ سپریم سول باپ ایک مقرر رتھ میں پرتیکش ہوتا ہے, वो सर्वव्यापी कह देते हैं। अंग्रेजी में भी कहते हैं सब आपस में भाई भाई। तो जब सब आपस में भाई भाई हैं, तो ब्रदरहुड हुआ या फादरहुड हुआ? सब भाई भाई हैं ना, तो उनका बाप एक चाहिए ना। परंतु अंग्रेजी में जो कहने वाले हैं क्रिश्चियंस मोस्टली, उनकी आत्मा पर दृष्टि नहीं जाती है, क्योंकि वो आत्म स्वरूप को जानते ही नहीं। वो ऐसे नहीं कहते हैं कि हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। समझते हैं मनुष्य मात्र सब भाई भाई हैं। फीमेल आपस में बहने हैं और मेल आपस में भाई भाई हैं। तो ये देवभान से कहते हैं, ये आत्मज्ञानियों के कहते हैं देवभान से। स्त्री पुरुष का जब भान आया या भाई बहन का भी अगर भान आया तो आत्मिक स्थिति पक्की नहीं कही जाएगी। बाप समझाते हैं तुम आत्मा है भाई भाई हो क्या? जब तुम आत्म की स्थिति में हो तो तुम सब भाई भाई हो। ये तुम किसको कहा? ब्रह्मा कुमार कुमारियों को कहा या शिवंशी बच्चे जो रुद्रमाला के मणके हैं उनको कहा? उनको कहा जो आत्मिक आत्म की स्थिति वाले, जिनके स्त्री पुरुष की भान समाप्त हुआ पड़ा है या समाप्त होने वाला है। तो बाप उन मर्द बच्चों को इमर्ज करके उनसे बात करते हैं, तुम आत्माएं भाई भाई हो, बाप से वर्षा लेने के हकदार हो क्या? तुम जो रुद्र के बच्चे हो, रुद्र माला होती है ना, उसमें सिर्फ मुख दिखाए जाते हैं, धड़ा नहीं दिखाया जाता है, ये नीचे का या शरीर नहीं दिखाया जाता। माने उनमें देहभान लास्ट स्टेज में उनमें देहभान नहीं रहेगा। जैसे परमात्मा शिव है रूहानी स्टेज वाला है, ऐसे वो बच्चे भी रूहानी स्टेज वाले हैं। तो ऐसे रूहानी बच्चे जो है वो आपस में जो भाई भाई है वो वर्षा लेने के हकदार है क्या? विष्णु के बच्चे हकदार नहीं है वर्षा लेने की। जो विजयमाला बनेगी उस विजयमाला में जो बच्चे होंगे वो वर्षा बाप का लेने के हकदार नहीं है, वो रानियों का वर्षा ले सकते हैं, राजाई का वर्षा नहीं ले सकते। ये रुद्रमाला के जो मणके हैं आत्म की स्थिति वाले हैं वो परमात्मा बाप की राजाई का वर्षा लेने के हकदार है। वेद के बाप से सुख और शांति के वर्षे के हकदार हैं। सचयुग में शांति और सुख दोनों थे, भारत सुख धाम था तो बाकी सब शांति धाम में थे क्या? भारत में विदेश में क्या अंतर बताया? असली भारतवासी कौन है? नहीं, जो सुख का वर्षा लेते हैं, जीवन मुक्ति का वर्षा लेते हैं, माने जीवन में रहते रहते ही दुख दर्दों से मुक्ति हो जाती है, ये शरीर भी रहे जीवन भी रहे शरीर छूट न जाए। तथा कथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों का क्या होता है? शरीर छूटा, क्योंकि उनके बाप का ही शरीर छूट गया। वो जिसको बाप मानते हैं ब्रह्मा को क्या मानते हैं? वो माई बाप मानते हैं, तो उनका ही शरीर छूट गया तो सारी वंशावली कैसी होगी? शरीर छोड़ने वाली होगी। तो जो शरीर छोड़ने वाले हैं उनको तो परम धाम की स्टेज में टिकना पड़े, मुक्ति प्राप्त करे, जीवन मुक्ति उनको प्राप्त नहीं होगी, बाद में होगी। लेकिन तुम बच्चे जो वो डायरेक्ट जीवन मुक्ति प्राप्त करते हो। भारत सुखधाम सार दूसरा कोई देश सुखधाम नहीं बनता। क्या सुख का धाम कोई दूसरा देश नहीं बनता है जहाँ सुख ही सुख हो, दुख का नाम निशान न हो, ऐसा कोई देश नहीं बनता सिवाय भारत के। तो जब भारत सुख धाम होता है तब जितने ये दूसरे धर्म खंड है, दूसरे धर्म पिताओं ने जहाँ अपनी धारणाएं फैलाई है वो सब शांति धाम में निवास करते हैं। क्या तो सत्यु का आदि होगा, तो सत्यु का आदि में वो रुद्रमाला के मर के राज्य करेंगे और उनकी आत्म की स्थिति में रहने वाली प्रजा होगी वो सारी सूर्यवंशी होगी। ऐसी कोई आत्माएं उनके अंदर मिक्स नहीं होगी जो द्वापर युग में जाकर दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाए। लक्ष्मीनारायण का ही राज्य था, अभी तो सबके लिए सुख धाम। क्यों सत्यु की आदि में सबके लिए सुख धाम था, अभी सबके लिए दुख धाम है? क्यों है? क्योंकि आज में राजा थे लक्ष्मी नारायण और अंत में अब लक्ष्मी नारायण जो है, जो पहले नर नारायण थे राजा थे वो अब प्रजा बन गए। तो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, राजाओं का राज्य नहीं है। बाबा कहते हैं ये प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, बेकायदे राज्य। इस बेकायदे राज्य में सुख शांति नहीं हो सकती। जहाँ कायदा है, ईश्वरीय कायदा है राजाई का, जहाँ कोई राजाई नहीं है, कोई धनी धोरी ही नहीं है, तो वहाँ सुख शांति का सवाल होता ही नहीं। कोई शांति मांगे बोलो, ये कोई शांति धाम थोड़े ही है जो तुम शांति मांगते हो? यहाँ तो थोड़ी देर हाथ पांव बांध करके कोई बैठ जाएंगे, बिंदी की याद में बैठ जाएंगे थोड़े समय के लिए, शांति हो जाएगी। वो भी जितनी उनकी प्रैक्टिस होगी निसंकल्प स्टेज में टिकने की, उतनी शांति हो जाएगी। बाकी सदाकाल की शांति तो यहाँ हो नहीं सकती, क्योंकि ये है ही अशांति धाम। दुख धाम में तो न सुख होता है और न शांति होती है। होती भी है तो अल्पकाल की होती। सत्यु को कहा जाता है सुख धाम, क्यों त्रेता में सुख धाम नहीं कह सकते है? सत्यु को ही क्यों कहा जाता है सुख धाम? क्योंकि त्रेता में भी दो कलाएं आत्मा की कम हो जाएंगी, सत्यु में 16 कला संपूर्ण होते हैं, तो वहां सुखी ही सुख है। और त्रेता में दुख तो नहीं होता है लेकिन सुख की कोटि कम हो जाती है। इतनी सहज बात है, ये बाबा जो खुद मालिक था ये भी भूल गया, इसकी तरफ इशारा किया है। ये है बाबा, ब्रह्मा बाबा की तरफ इशारा किया। शिव बाबा ने बोला कि ये है बाबा जो खुद मालिक था, सचिव में कृष्ण के रूप में जन्म लेगा, बड़ा होकर के नारायण बनेगा ना, 16 कला संपूर्ण नारायण बनेगा ना, तो जो खुद मालिक था यह भी भूल गया। 84 जन्म लेते लेते पतित बनना ही है, इनको भी पतित बनना है। तुम्हारी बुद्धि में है 84 जन्म हम ही लेते हैं, क्या ये तुम्हारी बुद्धि में है? क्यों तुम्हारी बुद्धि में है और यह जो मालिक था उसकी बुद्धि में नहीं है? क्यों है?
कम साल बचे,
हाँ उसके 50 वर्ष कम हो जाते हैं। तो तुम्हारी बुद्धि में है कि हम 84 जन्म ही लेते हैं, उन सत्संगों में लाखों मनुष्य जाते हैं और करोड़ों सत्संग कराने वालों के फॉलोअर्स हैं, उनका यहाँ मापदंड कुछ भी नहीं है क्या? कॉलेज की पढ़ाई होती है, यह मापदंड होता है कि डॉक्टर बनेंगे, मास्टर बनेंगे, टीचर बनेंगे, वकील बनेंगे, जज बनेंगे, लेकिन ये जो गुरु लोग पढ़ाई पढ़ाते हैं उनका यह मापदंड कुछ भी नहीं होता। कौन से गुरु लोगों की बात की होगी? बाहर की दुनिया वालों की। बाबा बाहर की दुनिया वालों को पढ़ाई पढ़ा रहा है क्या? तो किन गुरुओं की तरफ इशारा किया है? ब्राह्मणों की दुनिया में जो सत्संग लगाए रहे हैं, मेगा प्रोग्राम कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बड़े बड़े मेले लगाते हैं, उनमें जो भाषण करते हैं, उन भाषण करने वालों से पूछो तुम्हारा अहम मापदंड क्या है, तुम क्या बनना चाहते हो और क्या बनाना चाहते हो, तो क्या बताएंगे?
नरसिंह नारायण
बनेंगे वो कहते हैं कि हम नरसिंह नारायण इसी जन्म में बनेंगे। वो दीदी दादियां जब भाषण करती है तो ये बात बताती है कि यहाँ जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है प्रजा पिता ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में, वो इसी जन्म में नरसिंह नारायण बनाती है। छोड़ जाओ, अब ऐसा कोई बुद्धू स्टूडेंट होगा है जो ये समझ के बैठ जाए कि डॉक्टरी की पढ़ाई हम इस जन्म में पढ़ेंगे, वकालत की पढ़ाई हम इस जन्म में पढ़ेंगे और अगले जन्म में जाके डॉक्टर और वकील बनेंगे? कोई पढ़ेगा? तो वहाँ कोई एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। वो देहधारी धर्मगुरु लोग जो पढ़ाई पढ़ाए रहे हैं, ब्राह्मणों की दुनिया की ही बात है। क्यों बाहर की दुनिया की बात क्यों नहीं? नहीं नहीं, बाहर की दुनिया की बात इसलिए नहीं है कि जब से हम ज्ञान में आए हैं तब से बाबा ने सिखाया है आप हुए मर गई दुनिया। हम तो उस पुरानी दुनिया जो भस्म होने वाली दुनिया है हम उससे हमने अपने को खत्म कर दिया। हमारा उस दुनिया से अब कुछ लेना देना नहीं है। भस्म होने वाली दुनिया में हमारी बुद्धि आंख नहीं जाती। अगर हमारी आंख जा भी रही है तो जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, उनके लिए थोड़ी आस है कि आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे। तो उनके जो गुरु हैं उनके लिए बात बताई, उनका अहम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है लेकिन उनके फॉलोअर्स करो। और हम इतना समझाते हैं एक एक को, सौ को समझाएंगे तब कहीं एक ऐसा निकलता है जो रेगुलर स्टूडेंट बनता है। तो उनके करोड़ों फॉलोअर्स होते हैं क्योंकि वो तो मजमा इकट्ठा कर लेते हैं लाखों करोड़ों का और उनको भाषण दे देते हैं तो उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं। तो उनमें और हमारे में क्या फर्क हुआ सत्संग में? हाँ, उनकी तो बहुत हुजूम हो जाता है और पांच पांडव तो पांच ही होते हैं, वो तो संख्या में इतने होते हैं कि उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। तो वहां उनके करोड़ों फॉलोअर्स इसलिए हो जाते हैं कि वहां अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है, उनको एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। और हमारा तो एम ऑब्जेक्ट है, हमारी अंधश्रद्धा नहीं है, हम तो प्रैक्टिकल बात बताते हैं, मुरली की ही बात बताते हैं और शास्त्रों की ही बात बताते हैं। गीता में भी ये बात आई है क्या कि भगवान ने अर्जुन को कौन सा ज्ञान दिया? नर से नारायण और नारी को द्रौपदी को नारायणी बनाने का ज्ञान दिया। तो गुरु से क्या मिलता है? वो उनके फॉलोअर्स कुछ भी नहीं जानते, बस कह देते हैं सब ईश्वर के रूप है, आत्मा सु परमात्मा। क्या क्या कह देते हैं? आत्मा सु परमात्मा। अरे शंकर क्या होता है? हम सब शंकर हैं। स्थापना पालना और विनाश ये सब काम हमारा है। हालांकि स्थापना करने वाले को परमात्मा नहीं कहा जाता, पालना करने वाले को भी परमात्मा नहीं कहा जाता, जो परमात्मा है उसमें तो सुप्रीम सोल मुकर्र रूप में प्रवेश करके वो कार्य कराता है जो न ब्रह्मा कर सकता है, न विष्णु कर सकता है, न इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक कोई भी नहीं कर सकते। वो कौन सा काम है? हाँ, विनाश कराने के लिए जो पुराने पुराने धर्म गुरु है और धर्म को फॉलो करने वालों का हुजूम है वो बड़े कट्टर होते हैं। उनका विनाश कराना, पुरानेपन का विनाश कराना कोई सहज काम नहीं है। वो धर्म पिताएं आए, उन्होंने पूर्व के जो उनसे पहले का जो धर्म था उसका अपोजिशन नहीं किया, उसको नष्ट नहीं किया, अपनी धारणाएं सुना दी। जैसे घड़े में दूध भरा हुआ हो, नहीं विष भरा हुआ हो, तो द्वापर युग में आकर के तो देवताएं विशेष हो जाते हैं ना, तो उस विष भरे घड़े में उन्होंने थोड़ा अपना सात्विक ज्ञान, परम धाम से आई हुई नई आत्मा है तो वो सात्विक ज्ञान डाल दिया। तो विष भरा घड़ा है उसमें थोड़ा सा दूध चुल्लू भर डाल दो, हालांकि वो दूध भी उतना स्वच्छ नहीं है, तो क्या वो घड़ा जो है उसमें कोई परिवर्तन आएगा? वो दूध भी क्या हो जाएगा? ज्योतिष हो जाएगा। तो ज्योतिष धर्म पिताएं आए, उन्होंने अपनी अपनी धारणाएं, नई नई धारणाओं की स्थापना कर दी, लेकिन पुरानेपन का विनाश करने का किसी में ताकत नहीं आई। तो ये जो कार्य जो कोई नहीं कर सकता है, वह कार्य जिसके द्वारा किया जाता है वही परमात्मा है। जो ऊपर बताया क्या परमात्मा पी भी बाप है, मैं हूं बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप और वो है मनुष्य सृष्टि का बाप। कौन? प्रजापति। तो वो तो कह देते हैं सब ईश्वर के रूप हैं, ईश्वर ने अपनी लीला रची है, अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। माया की तुल संवादी दुनिया में बहुत है, क्या था है? माया की तुल संवादी, ये तुल संवादी कहां से आ गया शब्द है? पहले कभी सुना नहीं? सुना नहीं कैसे सुन? चलिए पहले तुल संवादी का अर्थ भी बताया है? वो माया की तुल संवादी क्यों बता दी? तुलसी का नाम नहीं सुना? सुना क्या? सुना तुलसीदास है,
तुलसी दो पता था।
हाँ, तुलसी जो है वो महारानी तो कही जाती है, क्या महारानी तो है, जैसे राधा को महारानी कहते हैं ऐसे तुलसी को भी महारानी कहते हैं, लेकिन तुलसी दो प्रकार की होती है, एक काली तुलसी और एक हरित तुलसी। एक के काले काले पत्ते होते हैं और एक के हरे हरे पत्ते होते हैं। जो काली तुलसी होती है वो जंगल में पनपती है, क्या जहाँ जहाँ कांटों का जंगल होगा तो दुखदाई होगा जंगल होगा, वो उन्हीं के साथ ही पनपेगी, क्या वही पनपेगी। ऐसे खूंखार जानवर जो चीड़ फाड़ के खा जाए उस माहौल में पनपती है, और उसको अगर ला करके घर परिवार के जीवन में रख दे तो नहीं पनपती। और हरित तुलसी जो होती है वो घर घर में आंगन आंगन में रखी जाती है, वो घर परिवार में पालना ले लेती रहती है। ये है कहाँ की बात? एडवांस पार्टी में, ब्राह्मण की दुनिया में। जब एडवांस पार्टी की शुरुआत होती है तो आज में कोई कन्या कहो माता कहो वो ऐसी निकलती है जो ईश्वर का विशेष सहयोग देती है। एडवांस पार्टी सन 76 की ही बात नहीं है, वो आत्मा यज्ञ के आज में भी थी, जिसके लिए बाबा मुरली में कहते हैं एक पहले भंगीन आती थी यज्ञ के आज में, सत्संग में आके बैठ जाती थी, बाबा के आके गले चिपट जाती थी सबके सामने, मैंने गले का हार बन जाती थी। क्या गले का हार बन जाना माने माला में नंबर तो क्या? तो ऐसा जो पार्ट बजाने वाली थी उसको बाद में बंगी लोग इकट्ठे हुए और झगड़ा करके उसको ले गए। तो 76 में भी वो आत्मा दोबारा जन्म लेकर के आती है और फिर शुरुआत में फाउंडेशन उसी के द्वारा पड़ता है, जिसको दुनिया ठुकराती है, बाप उसको हरिजन को क्या कहते हैं गले लगा, हरिजन किसे कहते हैं, सूत्रों को हरिजन कहते हैं ना, तो बाप आकर के उनको गले लगा लेते हैं। लेकिन आज की गवर्नमेंट में भी देखा जाता है, क्या देखा जाता है, हरिजनों को गवर्नमेंट में ऊंचे ऊंचे पदों पर रखते जा रहे हैं और जो सवर्ण लोग हैं ऊंची कास्ट के लोग जिनका ऊंचा कुल माना जाता है समाज में उनको प्रेफरेंस नहीं दे रहे। तो रिजल्ट क्या हो रहा है, जो शासन तंत्र चल रहा है उसमें भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। वो तो भ्रष्टाचार कहते हैं पैसे के लेन देन को, हम ब्राह्मण की दुनिया में भ्रष्टाचार किसको कहा जाता है, भ्रष्ट इंद्रियों का जो भ्रष्ट आचरण है उसको भ्रष्टाचार कहा जाता है। जो भ्रष्ट इंद्रियां जो नीचे की इंद्रियां हैं उनसे जो आचरण किया जाता है और वो आचरण भी भ्रष्ट किया जाता है, मतलब अनेकों के साथ संसर्ग संपर्क व्यभिचार में जाना कर्म इंद्रियों का वो है भ्रष्टाचार। हम ब्राह्मणों की परिभाषा, तो चाहे एडवांस पार्टी की आदि कहो और चाहे यज्ञ के आज की बात कहो, यज्ञ स्थापना की बात, दोनों में वो आत्मा पार्ट बजाती है। शुरुआत में फाउंडेशन उसके द्वारा पड़ती है, लेकिन थोड़े समय पावर फाउंडेशन रहने के बाद अपने पूर्व जन्म के स्वभाव संस्कार के आधार पर वो आत्मा वापस उसी कांटों के जंगल में चली जाती। लेकिन जो फाउंडेशन पड़ा उसका फायदा ये होता है कि वो जो हरित तुलसी है वो आ जाती है जन्म, जो घर घर में आरोपित की जाती है, लेकिन उसको आंगन में रखा जाता है, क्या अंदर नहीं रखा जाता है बेडरूम में, कहीं देखा तुलसी को कभी बेडरूम में नहीं रखा जाता, बाहर बैठती है, क्यों, अगर चैतन्य रूप है तुलसी का तो चैतन्य में किसको बाहर बैठाया जाता है और कौन अंदर बैठते हैं, तो मीरा दासी कहो कुछ ऐसा ब्राह्मण जीवन में चलते चलते कोई न कोई ऐसी गलती हो जाती है जिसकी वजह से वो दास दासी पद मिल जाता है। अच्छा सबसे श्रेष्ठ दास दासी कौन होते हैं, माँ बाप, तो राजघराने में भी दो प्रकार की महारानियां गाई हुई है, कोई राजा होता है उसके राज्य में एक होती है राजमाता और एक होती है राजरानी, क्या राज्य की कंट्रोलिंग किसके हाथ में होती है, राजमाता के हाथ में कंट्रोलिंग तो होती है लेकिन وہاں جو گدی لگائی جاتی ہے اس گدی میں ساتھ میں کون بیٹھتا ہے؟ راج رانی ساتھ میں بیٹھتی ہے, اور بازو میں ایک اونچی کرسی پر دکھائی جاتی ہے جہاں راج ماتا بیٹھتی ہے. تو ماتا ہوئی نا, مانا داس داسیوں میں سب سے اونچا پد پراپت کرنے والی وہ ہوئی تو داسی نا. تو دو پرکار کی ہو گئی دیویاں, کیا وشنو روپ میں جو مہالکشمی کا جو پارٹ کہا جاتا ہے اس میں دو لکشمی ہو گئی. ایک لکشمی وہ جو راج ماتا بنتی ہے, اور ایک لکشمی وہ جو راج رانی بنتی ہے. مانا جو ویشنو دیوی ہے وہ راج رانی بنتی ہے, اور رودر مالا کی جو ماتا ہے جسے جگدمبا کہا جاتا ہے, جو ساری منشیہ سرشتی کا بیج ہے ماتا کے روپ میں, وہ راج ماتا بنتی ہے. تو ضرور اس سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے جس کے آدھار پر اس کو باہر بیٹھایا جاتا ہے بھکتی مارگ میں. اندر کی بات اسے نہیں بتائی جاتی, باہر کس کو بیٹھایا جاتا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو لکھاؤ کر دے, کیونکہ سواؤ سنسکار ٹھیک نہیں ہے. تو یہاں بولا مایا کی تلسم بازی دنیا میں بہت ہے. مایا کی کیوں کہا؟ مایا راون کی تلسم بازی کیوں بتائی؟ رام کی تلسم بازی کیوں نہیں؟ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اندر سے چاہنا تو کچھ اور ہوتی ہے, لیکن مارے اہنکار کے اس چاہنا کو کوئی ویکت نہیں کر پاتا, یا اپنی غلطی کو سویکار نہیں کر پاتا. غلطی اپنی ہوتی ہے لیکن اہنکار کے آدھار پر وہ غلطی کو سویکار نہیں کرتا. تو جب تک غلطی سویکار نہیں ہوئی ہے تب تک وہ چھما نہیں ہوتی. تو تلسی کا بھی ایسا ہی پارٹ ہے, چاہے وہ کالی تلسی ہو اور چاہے ہرت تلسی ہو, ان دونوں کے پارٹ میں یہ وشیشتا ہے کہ وہ سدیو مہا گوری کا پارٹ نہیں بجا سکتے. کیا جب اپنے دیہان میں آتے ہیں تو سنہار پنج اتر آتے ہیں, تو جگدمبا مہا کالی بھی بنتی ہے. کیا اگر تمہاری میں بولا ہے کہ پرکتی دونوں ہاتھوں میں جھاڑو لے کر کھڑی ہے, اس کا مطلب وناش کے لیے تیار کھڑی ہے. تو وناش شنکر جی کا کام ہے یا شکتیوں کا کام ہے؟ کیوں شنکر دوارا وناش گایا ہوا ہے؟ شکتیوں دوارا وناش گایا ہوا ہے نہیں؟ شکتیوں کو سنہار کارنی کہتے ہیں. شنکر جی جو ہے وہ تو یاد میں رہنے والا جیوڑا ہے. یاد میں رہنا, منشا شکتی سے سارا کاری کرانا, یہ بہت اونچی بات ہے. وہ منسا کی پاور سے جتنے بھی آسر ہیں ان سب کا سنہار کرا دینا, یہ شنکر کا کام ہے. خود نہیں کرتا ہے, شکتیوں کے دوارا کراتا ہے. اب چونکہ تول میں دیکھا جائے تو استری میں زیادہ دیوان ہوتا ہے یا پرش میں زیادہ دیوان ہوتا ہے؟ دیہ کا ہونا زیادہ کس کو ہوتا ہے؟ استری جاتی میں دیہ کا ہونا زیادہ ہوتا ہے, اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے سامنے پرش کو جھکنا پڑے. استری کوئی ایسی اسٹیج ہوتی ہے جہاں اس سے جھکتی نہیں. ہاں کوئی سوپر کا پوچھ رہا ہوگی تو وہ دوسری بات ہے نا. تو وہ بھی ایک پرکار کا جو دیوہن ہے وہ دیوہن کو تیار نہیں پاتی پورا. میں نے جیسے چلایا جائے ویسے نہیں چل پاتی, तो वो तुलसंबाजी बाबा ने शब्द बोला कि माया की तुलसंबाजी दुनिया में बहुत है। ये सारी दुनिया में जो भी माया की तुलसंबाजी बनाने दिखाने वाले हैं वो बहुत है, थोड़े नहीं है। यहाँ बाप कहते हैं बच्चे में तुमको फिर से वो ही सहज राजयोग सिखा रहा हूँ। कौन सा? जो यज्ञ के आज में सिखाया था वो ये फिर से सिखा रहा हूँ, जिससे तुम फिर से राजा ही प्राप्त कर सकते हो। ड्रामा तुमको पुरुषार्थ अवश्य करावेगा। कौन सा पुरुषार्थ? राजा ही प्राप्त करने का पुरुषार्थ ड्रामा तुमको जरूर कराएगा। ड्रामा अनुसार बाप को भी आना पड़ता है, आना पड़ता है। क्या आना नहीं चाहते? आना पड़ता है पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए। माने इस पतित दुनिया में, इस चीची दुनिया में, इस बेविचारी दुनिया में बाप आना नहीं चाहते, फिर भी आना पड़ता है। किसलिए आना पड़ता है? क्योंकि उनका पार्टी है पतितों को पावन बनाना। आपको चाहे काली तुलसी हो और चाहे हरित तुलसी हो, उस पतित पने का कार्य हो जाता है तो उन पतितों को पावन बनाने के लिए बाप बांधा हुआ है। तो मुझे आना पड़ता है पति दुनिया को पावन बनाने के लिए। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। क्या ये माया की तुलसंबाजी बात है? तब तुलसंबाजी वाली बात जो है, जो आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले बच्चे हैं वो ही समझ सकते हैं। जो देव आने वाले होंगे वो अंत तक इसका अपोजिशन करेंगे। यहां नहीं मानते ये तुलसंबाजी का ये अर्थ होता है। क्यों अपोजिशन करेंगे? क्योंकि वो है तुलसी की भगत। जब बाप आया हुआ है तो बाप को मान्यता देना चाहिए या देवियों को मान्यता देना चाहिए? बाप को मान्यता देना चाहिए। मान्यता क्या? अगर श्रीमत की बातों में कहीं टकराव हो जाता है माता की श्रीमत ये है या ब्रह्मा कुमारी की श्रीमत ये है या प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की श्रीमत ये है और बाप ये कहता है तो कौन सी बात माननी पड़ेगी? बाप की बात माननी पड़ेगी। अगर बाप की बात को ठुकराते हैं तो वर्षे में कटौती हो जाती है। इसीलिए मुरली में बोला है कि देवी की पुजारी है रावण का मुद्दा। क्यों बोला? क्योंकि वहां से शुरुआत होती है रावण के अधिक मतों की। अगर एक बाप की ही मत पर चलते रहे तो राम संप्रदाय ही बने। रावण का राज्य आए ही नहीं। लेकिन ब्राह्मणों के संगम इस दुनिया में ये फाउंडेशन पर ही जाता है ड्रामा के अनुसार। क्या बेसिक नॉलेज में भी अम्मा ही अम्मा चिल्लाते रहे और अम्मा ने शरीर छोड़ दिया तो भी अभी अम्मा ही अम्मा, अम्मा ही मुरली। और एडवांस नॉलेज में भी ऐसे बहुत हैं, ढेर हैं कि अम्मा की पूरी ही दुर्गति हो गई, पूरी रावण की जेल में चली गई, अभी भी क्या चिल्लाते रहते हैं अम्मा ही अम्मा जगदम्बाई जगदम्बा जगदम्बाई जगदम्बा। इसलिए मुरली ने बोल दिया कि देवी की पुजारी है रावण समुदाय। वो क्यों अम्मा अम्मा चिल्लाते हैं? जब बाप से सारी सब प्रकार की प्राप्ति होती है तो अम्मा अम्मा क्यों चिल्लाते हैं? नहीं वो बाप के प्रति वो नहीं हो सकता। वो इसलिए चिल्लाते हैं कि वो अपनी गलत बातें मनवाने के लिए अम्मा को जल्दी राजी कर लेते हैं। बाप उनकी बातों के छलावे में नहीं आता है। अम्मा की इतनी दूरदृष्टि नहीं है इन बच्चों की सब बातें मान लेने से विश्व का कल्याण हो जाएगा। باپ کی دوردرشی ہوتی ہے. تو باپ ترمورتی کے چتر میں سپت روپ میں بیٹھا ہوا دکھایا گیا اور ماں برہم لوز روپ میں بیٹھی دکھائی. دنیا میں بھی دیکھا جاتا ہے بچہ کتنا بھی ہتھیارا ہو, لچا لفنگا ہو, دشٹ ہو, ماں اس کو اپنی گود سے الگ نہیں کرنا چاہتی. اور باپ باپ دیکھے گا بچہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہے, دشٹتا دینے والا ہے, دوسرے بھائی بہنوں کو تنگ دینے والا ہے, دھنائی کر دے گا. تو یہ جتنے بھی دوسرے دوسرے دھرموں کے نارائن ہیں جو کم کلا کے نارائن بنتے ہیں, جو دواپر اسے دوسرے دوسرے دھرموں میں کنورٹ ہو جاتے ہیں, وہ باپ کو مانیتا نہیں دیتے. کیا اس کو مانیتا دیتے ہیں؟ ماں کو, برہما کو مانیتا دیتے ہیں. مرتے مرتے مر جائیں گے لیکن اما ہی اما گیتا کا بھگوان بنا رہے گا. برہما کو ہی گیتا کا بھگوان کہیں گے. وہ گیتا کا بھگوان ان کی بدھی میں شیو شنکر بھولے ناتھ بیٹھ نہیں سکتا, اور گیتا کا بھگوان شیو شنکر بھولے ناتھ ان کی بدھی میں نہیں بیٹھے گا. تو گیتا ایسی ہوگی بن نہیں سکتی کہ وہ باپ سے ورتا دلائی سکے. گیتا تو سچی گیتا ہے. مجھے نے کیا بولا؟ گیتا تو سچی گیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جگدمبا کا پارٹ بجانے والی اندر سے سچی ہے, لیکن مایا کی جو تلسم بازی ہے نا, وہ تلسم بازی اس کی اپنی نہیں ہے. کس کی ہے؟ مایا کی. مایا بیٹی نے اس کی بدھی کو ایسا بھرمت کر دیا کہ باپ کی بات ماننے کی بجائے اپنے بچوں کی طرف دھر جاتی ہے. یتی کے ہاتھ میں بھی ایسے ہوا تھا, وناش والا یہ کی کنڈ سے پرچلت ہوئی تھی. باپ برہما اور براہمن بچے نمت بن گئے. کوئی نے ماں کا پکش لیا اور کوئی نے باپ کا پکش لیا. جو باپ کا پکش لینے والے تھے وہ سوریہ ونشی بچے جو تھوڑے سے تھے, یہ بھی وہ چلے گئے کیونکہ اس سمے نالج تو تھی نہیں. اور جو ماں کو فالو کرنے والے بچے تھے وہ تو سات نارائنوں کی جو پرجا ہے وہ تو ڈھیر ساری ہوتی ہے سات دھرموں کی. ایک ایک دھرم سے کنیکٹڈ بارہ بارہ شریشٹھ آتمائیں نکلتی ہیں مالم. بارہ ستے کتنے؟ 84 84. تو یہ 84 جم گھنٹ ہیں دوسرے دوسرے دھرموں کے. ان کی بدھی میں یہ بات بیٹھتی نہیں ہے کیا کہ پرماتما باپ پتت پاون ہے, سنگ کے رنگ سے پتتوں کو پاون بنانے والا ہے. اور وہ انت تک اس بات کا اپوزیشن کرتے ہیں. کون؟
گھنٹ.
کیا مندر میں جاتے ہیں تو گھنٹ بجے گا پہلے؟ شیو شنکر کے مندر میں جائیں گے یا شیولنگ کے مندر میں ہی جائیں گے تو وہاں تو بہت گھنٹے ہوتے ہیں, تو گھنٹے بجائیں گے. ان کی بدھی میں گھنٹ کیوں بجاتے ہیں؟ ان کی بدھی میں بھکتوں کی بدھی میں بیٹھا ہوا ہے کہ شنکر پاروتی جو ہے وہ ہماری طرح پڑے ہوئے ہوں گے, تو اٹھ کے بیٹھ جاؤ ہم آ رہے ہیں. بھکت تو بھکت ہے. تو دوسرے دھرموں میں جو کنورٹ ہونے والی جو بھی آتمائیں ہیں براہمن پریوار میں وہ سب بھکت ہیں, اور جانی آتمائیں سوریہ ونشیوں کو جو ورن کرتے ہیں وہ چندرونشی بھی ورن کرنے کے بعد سوریہ ونشی بن جاتے ہیں. तो ये दो ग्रुप हैं सूर्यवंश और चंद्रवंश। जब झगड़ा शुरू होता है तो चंद्रवंश भी विरोधी बन जाते हैं, क्योंकि ज्ञान चंद्रमा स्वतः ही विरोधी बन जाता है। चंद्रमा में सूर्य में क्या फर्क विशेष देखने में आता है? हाँ, चंद्रमा की रोशनी कम और ज्यादा होती है और सूर्य की रोशनी कम और ज्यादा होने का सवाल नहीं है। माना वो अनिश्चय बुद्धि नहीं होता है और चंद्रमा नीचे ऊपर होता है। सबसे जास्ती जन्म कौन लेता है, ब्रह्मा या कोई दूसरी आत्मा है? सबसे जास्ती जन्म मन के चक्र में कौन आता है, निश्चय अनिश्चय के चक्र में कौन आता है? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा की सोल अभी भी निश्चय अनिश्चय के चक्र में आ रही है, भले वो बीज रूप स्टेज धारण करके प्रजापिता में प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद भी जैसे ही वो प्रवेशता से मुक्त होती है उबल जाता है, प्रवेश कर जाती है सूक्ष्म शरीर से, तो देवान आ जाता है। सूक्ष्म देवान भी होता है, तो सूक्ष्म शरीर से जब वहां प्रवेश करती है तो फिर बुद्धि परत जाती है। तो ये मां का मोह जल्दी खत्म नहीं होता। तो ये है माया की तुल संवादी। माया ने सारी दुनिया को अपने पंजे में फंसा रखा है, सारी दुनिया में जगत पिता और जगदम्बा भी आए जाते हैं, लेकिन जगत पिता में मुकर्रर रूप से प्रवेश है कौन? शिव बाप, जिसे मायापति कहा जाता है, प्रकृति पति कहा जाता है। तो जिसमें शिव प्रवेश है वो माया के कंट्रोल में आएगा, प्रकृति के कंट्रोल में आएगा, या प्रकृति को और माया को कंट्रोल करके छोड़ेगा? कितनी भी तुल संभाजी दिखाए लेकिन वो कंट्रोल में आने वाला नहीं है। और अभी तो अव्यक्तवाणी में भी ये बात बोल दी, क्या कि माया अब थक गई है, प्रकृति भी थक गई है, तंग आ गई है। तो माया थक गई है तो वो जान चुकी है कि अब हमारा राज्य अब जाने वाला है, अब कोई गुंजाइश नहीं है। और प्रकृति, माया और प्रकृति के बीच में ज्यादा बुद्धिशाली कौन है? माया बुद्धिशाली, इतनी बुद्धिमान है कि वो ऐसा पांसा फेंकती है कि अगर हम पास से नहीं मिल सकते तो हम किसी को नहीं मिलने देंगे, चाहे तुम भट्टी करो चाहे भट्टा करो। लेकिन बाप भी बड़ा चतुर सुजान है, माया कितनी भी तुलसंबाजी फैलाए लेकिन बाप बच्चों से मिलकर के ही रहेगा, क्योंकि मुरली में बोला हुआ है फादर है और फादर से कहे, सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता है? सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबसे आकर के मिलते हैं। तो जो बच्चे बाप के घर में जाकर के निश्चय बुद्धि बनते हैं, जन्म लेते हैं, उन बच्चों से बाप नहीं मिलेगा। लौकिक दुनिया में भी घर में बच्चा पैदा होता है तो माँ मुखड़ा देखते या न देखे लेकिन बाप जरूर देखेगा। माँ बीमार पड़ जाती है, हॉस्पिटल में पड़ी हुई माँ बीमार है, अचेतावस्था में है, वो पता भी नहीं चलता उसको बच्चा पैदा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन बाप उसका मुखड़ा जरूर देखता है। तो माया बुद्धिशाली है, प्रकृति जड़त्वमयी है, प्रकृति को इतना अकल नहीं है, भले वो जगत की माँ है लेकिन जगत पिता के मुकाबले उसमें बुद्धि ही उतनी नहीं है। तो बुद्धि न होने की वजह से माया की चक्री में आ जाती है। जो माया रावण के संप्रदाय है वो उसे बरगलाए लेते हैं, किसको? प्रकृति माता को बरगलाए लेते हैं। जब बुद्धि को ही बरगलाए लिया کسی کی بدھی کو بس میں کر لو, پھر ان سے چاہے جیسے کام کرواتے رہو. تو دوشی کون ہوا, اصلی دوشی کون ہے, مایا یا پرکتی؟ بھلے پرکتی ساری دنیا کا وناش کرا دے گی, جب تنگ ہو جائے گی تو کیا کرے گی, ساری دنیا کا وناش کرا دے گی, سارے برہم پریوار کا وناش کر, چاہے بی کے ہو چاہے پی وی کو ہو, سب سواہا. کیا اتنی طاقت ہے, کیونکہ باپ کی پہلی رچنا ہے کون, پرکتی جگدمبا ساری جگت کی ماں, وہ فرسٹ رچنا ہے تو پاور فل تو ہوگی نا, شیش رچنا نہیں ہے. کیا پرش کی پہلی رچنا کون ہوتی ہے, استری, لیکن اس کی شیش رچنا کون ہوتی ہے جو ورثہ پاتی ہے, بچہ. کیونکہ جو ماتا ہے, ماتا کا چولا ہی اس طرح کا ہے کہ وہ سب کچھ اپنا اپنے بچے کے پرتی ارپن کر دیتی ہے. کیا بچہ کیسا بھی ہو, دشٹ سے دشٹ کیوں نہ ہو, لیکن اپنے بچے کو سب کچھ ارپن کر دے گی, پتی کی بھی بات نہ مانے نہ مانے, لیکن بچے کی طرف داری ضرور دے گی. ایسے ہی پرکتی ہے, پرکتی ہی ان ساری باتوں کا پرمپراؤں کا فاؤنڈیشن ڈالتی ہے. پرکتی بھلے راون کے پنجے میں ہے, لیکن پرکتی ماتا کا دوش نہیں ہے. یہ ساری سرشتی کو دواپر یوگ سے پلوٹ کیا ہے پرکتی کو دوسرے دوسرے دھرم کے فالوور نے. پرکتی ماتا کو پلوٹ کرنا, یہ گیتا کا کھنڈن کرنا, یہ بہت خراب بات ہے. کوئی بچہ ہو اور ماتا کا ہی پتی بن کے بیٹھ جائے تو اس سے زیادہ مہاپاپ کچھ اور ہوگا کیا, ہوگا؟ کوئی بچہ ہو اور وہ ماتا کا پتی بن کے بیٹھ جائے تو اس سے بڑا پاپ کوئی ہوتا ہے کیا, نہیں ہوتا. اتنے اتنے جگنیہ اپرادھ کرنے والے اس ماتا کو اپنے کنٹرول میں لے کر کے بیٹھتے ہیں, اور جب یہ بات بولی جاتی ہے مرلی میں کہ سیتا ابھی راون کی جیل میں, تو کہتے ہم نہیں اس بات کو مان سکتے, تم سیتا کو کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو مانیں گے کیوں؟ کوئی اپنے کو چور ڈکے تو بھلے ہو, لیکن وہ اپنے سویکار کرتا ہے اگر اس کے ساتھ چور ہو تو بھی کچھ آ جائے گا. کلاس میں جب بچی نہ کرنے والے بیٹھے ہوئے ہوں گے تو بابا کی مرلی کا ڈھنگ بدل جائے گا. جتنے زیادہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے اتنا ڈھنگ بدل جائے گا. اگر پورے ہی پکے پکے سارے ہی بچی کرنے والے پکے ہوئے ٹی وی کے بیٹھے ہوں گے تو بابا کی وانی ٹی وی کے لیے چلے گی. اگر کورس لیا ہے ایڈوانس بچی نہیں کی ہے تو میڈیم سائز کی چلے گی, اور اگر کورس بھی نہ لینے والے بالکل ہی انچے بدھی ہے ایسے لوگوں کی سنکھیا زیادہ بیٹھی ہوگی تو جنرل پبلک کی وانی چل جائے گی. جو گوہے راز ہیں وہ نہیں کھلے گی. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو بچے کیے ہوئے لوگ ہیں وہی بابا سے ملے اور وہی بابا کے کلاس میں بیٹھے تو وہاں جو ہے وہ تیز اور ترار چلے گی. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی کوئی بالغی ماتائیں جنہوں نے بچی نہیں کر پائی ہے لیکن نشچے بدھی بڑی پکی ہوتی ہے, جیسے کوئی اپواد ہوتا ہے
एक्स्ट्रा आएंगे
उनकी बात है। भाइयों में भी कोई कोई ऐसे होते हैं भले बत्ती नहीं की है क्या भला भले उनकी बत्ती की छाप नहीं लगी है तो वो दो चार को एडवांस कोर्स देकर के ज्ञान खींच लेते हैं कितने पक्के मजबूत हो जाते हैं।
तो अपने को अगर उसके सामने मुझे हो तो उनको कहा जाएगा